نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں تقویٰ کے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں گے اور تقویٰ کے ٹاپک میں آج ہم جس بات سے اپنی بات شروع کریں گے وہ کیا ہے، وہ کون سے نو نقطے ہیں جو ہمیں تقویٰ کے بلند و بالا درجوں پہ پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ باحسن درجے پہ ہو۔ ابھی تک ہم نے تقویٰ کی جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان سب کو سننے کے بعد اب دل میں یہ خواہش تو ہے کہ ہم بھی اپنے تقویٰ کو بڑھائیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ تقویٰ کو بڑھانے کے نو مختلف طریقے۔ لیکن میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ذہنی طور پہ اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ پوری طرح سے اس موضوع میں ڈوب جائیں۔ آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ ایک شخص ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دولت مند ہے یا غریب ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا اور کوئکلی۔ جی آپ، شاباش۔ اس کے کھانے پینے سے پتہ چلتا ہے، اس کے رہن سہن سے پتہ چلتا ہے، اس کے کپڑے پہننے کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے، اور کس سے پتہ چلتا ہے؟ باتوں سے۔ باتیں بھی بڑی بڑی کرتے ہیں، بالکل، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ کوئی اور بات اس سے اپوزٹ، اس سے مختلف جب بھی ہم نے نہ کی ہو کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کھاتا پیتا ہے یا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کے رہن سے، اس کے سہن سے، اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنا کیریئر شروع کرتا ہے ابھی، بلکہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کے ہسبینڈ جاب والے ہوں، ان کو یہ میری بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جب ایک انسان بہت سال پڑھنے کے بعد اپنا کیریئر شروع کرتا ہے، ایون ڈاکٹر ہی کیوں نہ بنے، تو بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے۔ ساتھ ہاؤس جاب بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹریننگ چل رہی ہوتی ہیں، اور پے بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ تو اس وقت گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ امریکہ میں آ گئے یا آپ ناروے میں آ گئے، آپ کہتے ہیں چلو بھائی ایک کمرے کا کہیں گھر لے لو، کسی کے ساتھ ہی لے لو، لگ کیا ملنا ہے، وہ تو بہت مہنگا ہوگا، اکیلا نہیں رہتا۔ آپ کیا ہوتا ہے، آپ اپنی گزارے کی چیزیں وہاں لے کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے صوفہ رکھ لے، آپ کہتے ہیں چھوڑو، کس نے آنا ہے، اور اتنے ہاتھ بھی نہیں کھلتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے شوہر کی پے بڑھتی گئی، ان کی پریکٹس چلتی گئی، کام چلتا گیا، تو جو ہی آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوئی، کس چیز میں اضافہ ہوا؟ آپ کے گھر کے فرنیچر میں، پردوں میں، پھر ایک ایک کر کے چیزیں بنتی ہیں، پھر چیزیں بیسکس پہ آتے آتے اس کے بعد اس کے ایکسٹرا پہ چلی جاتی ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب ہماری نیڈس پوری ہوتی ہیں تو ہم وانٹس پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم برانڈ نیم پسند کرنے لگتے ہیں۔ پہلے عام وائل پہن لیتے تھے، آپ کہتے نہیں ہمیں گل احمد سے نیچے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ عام کپڑے پہنتے تھے، آپ کہتے نہیں یہ فلاں کمپنی، یہ فلاں کمپنی، یعنی لوگوں کو اس کی چوائس کے اونچا ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس دولت آ گئی ہے۔ بالکل اسی چیز کو آپ رکھ لیجئے تقویٰ پہ۔ تقویٰ بھی ایک کرنسی ہے۔ جب ابتدا میں انسان کے پاس تقویٰ تھوڑا ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے تین درجے پڑھے پیچھے، جب تھوڑا تقویٰ ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ٹھیک لگتی ہیں۔ چلو گزارا تو ہو رہا ہے نا، نماز تو پڑھتی ہوں نا، گلے میں تو لیتی ہوں نا، دوسروں سے تو اچھا ہوں نا، شکر نہیں کرتی، یہ تو کرتا ہوں، اور یہ تو یہ جملے انسان کی زندگی میں بہت آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اپنے آپ کو بہت ساہوکار سمجھتا، لیکن آہستہ 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 اللہ کے حکم سے تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ ہم پوائنٹس پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اور بھی بڑھانے کے موقع مل جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو نیکیاں آج تک کر رہے تھے وہ عام لگتی ہیں۔ نماز یہ تو سب پڑھتے ہیں، فرض نماز یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں تو سنت بھی پڑھوں گا۔ پھر سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سنتیں تو سارے پڑھتے، میں تو نوافل بھی پڑھوں گا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا، پانچ نمازیں وقت پہ تھی، پہلے عام پڑھتے تھے، نہیں یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں تو وقت پہ پڑھوں گا، وقت پہ پڑھے نہیں، میں تو مسجد میں جا کے پڑھوں گا۔ دن بہ دن اس کی نماز برانڈڈ ہوتی جاتی ہے، کوالٹی اس کی امپروو ہوتی جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سب پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، لو یہ کیا بات ہے، میں تو رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھوں گا، پھر چاشت بھی پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا۔ وہ واقعہ یاد کیجیے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی، امیر لوگ تو ساری نیکیاں لے کے چلے گئے، جہاں اسلام کو ضرورت پڑتی ہے وہ بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو ضرورت کیا۔ کاچا تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات کر لیا کرو، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات سکھا دیے۔ وہ خوش خوش چلے گئے۔ کاچا تمہارے پیسوں کی کمی ان کلمات سے پوری ہوگی؟ کہا ہوگی۔ جب چلے گئے کچھ دن بعد آئے واپس کرنے کے، اللہ کے نبی ہم نے یہ کام شروع کیا، دیکھا دیکھی سب نے شروع کر دیا، اور یہ سچ ہے۔ लोग जिस तरह देखा देखी गुनाह करते हैं, नेकियों के काम भी करना चाहते हैं जैसे भी कर सके, लेकिन लोग देखते हैं। काला के ने भी अमीरों को भी पता चल गया इन वज़ायफ का, और उस दौर के अमीर देखिए बिगड़े हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम करते हो, हम भी करते हैं। कहा वो भी ये शुरू हो गए करना, तो आपने कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अब ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको दे। तो क्या पता चला कि तकवा के बढ़ते ही आपकी नेकियों का मेयार बढ़ता है, आपको फिर छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो बड़ी नहीं लगती, बल्कि बड़ी बड़ी नेकियां छोटी लगती हैं। और तकवा के साथ ही लाइफस्टाइल चेंज होता है। तकवा के बगैर आप ना कुर्बानी के दर्जे पे पहुंच सकते हैं ना हिजरत के, बस आप बेसिक पे हैं कि कलमा ला इलाहा पढ़ लो, जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाओ। ये जो जन्नत के 100 दर्जे हैं ना, और मुकर्रबून है और असाबिकून और लवलून, ये तकवा के आला दर्जों के साथ मुमकिन होता है। तो लिहाजा आप और मैं देखना चाहते हैं कि मैं तकवा के किस लेवल पे हूँ, मेरा पे स्केल क्या है, मेरे बैंक में कितनी बनी है, मेरी स्टेटमेंट कैसी है। तो आप और मैं अपनी नेकियों को देख लें हर चीज़ में, ये सिर्फ नमाज से नहीं रहता, फिर ये ज़िंदगी के हर पहलू पे जाते जाते एक वक्त आता है कि फिर इंसान कभी मुतमिन नहीं होता। और ये बात अगर जो आपको मैंने कही है ना, इसको सामने रखें, तो आपको सहाबा की वो तड़प और बेचैनियाँ समझ आएंगी। आके पूछते थे या सलून कमा जा यून, अल्लाह के नबी ये बताइए कि हम क्या खर्च करें। हम कहते हैं ना क्या ना खर्च करें, कैसे ज़कात का थोड़ा पैसा बच ही जाए, कोई तरीका बताएं कि हम कर्जदार हैं, हम ज़कात ना ही दें। कुर्बानी किस पे फ़र्ज़ है, नहीं करें तो क्या होगा, औरत कर ले तो ठीक है, मर्द करे, वो ऐसे सवाल नहीं करते थे। क्यों वो आके पूछते थे अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल जिस पे अल्लाह मुस्कुरा दे, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बताइए कि जिसके लिए मैं जन्नत में चला जाऊँ। तो तकवा बढ़ता है तो चैन कोई नहीं आता, सीधी सी बात है। खूब से खूब तर की तलाश। कुछ लोग नेकी छोटी सी करके मुतमईन, कहते और क्या करना है, ख़त्म। कुछ कहते हैं लो ये क्या किया, ये तो सारे कर रहे हैं, मुझे और बढ़ना है। फिर नतीजा पता क्या निकलता है, तकवा वाले चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। तकवा आपकी गाड़ी का पेट्रोल बन जाता है, कभी आपको इल्म के सफ़र पे रुकने नहीं देता कि बहुत सीख लिया, ना वो दीन की खिदमत के सफ़र में रोकता है कि दैट्स इट, और कब कब सर्टिफिकेट मिलेगा, कब हम वो अपने घर की दीवार और दिल की दीवार पे लगा के फारिग होके घर बैठ जाएंगे, बस बहुत। इसके बरक्स आप देखिए इंसान कहता है मुझे एक कोर्स करना है, 1 साल का कोर्स, डेट गिनता है, दिन गिनता है, इतने रह गए, इतने थे, इतने थे, दैट्स इट। उधर आमीन हुई, उधर खुलौज़ु बिरब्बिन नास हुई, उधर वो गायब। कहता बस कर लिया, कोर्स करना था कर लिया। जो बंदा दीन का इल्म सीख कर आगे ना बढ़े, समझिए कि उसका तकवा रुक गया है। तकवा बेचैन कर देता है और इंसान खूब से खूब तर जाता है। तो आइए देखते हैं कि जब तकवा हमारी ज़िंदगी की कामयाबी में और आखिरत के कामों में इतना फ़ाल है, तो उसको हासिल कैसा किया जाए और इसके लिए इंसान किस तरह करे। तो याद रखिए कि बातों से कुछ भी नहीं होता, असल चीज़ अमल है। अगर आप वाकई भागना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो दो तरह से आप देखेंगे खुद को। एक आपके अमल हैं ज़ाहिर नज़र आने वाले, जो हमें एक दूसरे के भी दिखते हैं, ये तो रीढ़ की हड्डी है ही। लेकिन तकवा किधर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तकवा हाहुना व युशीरु इला सदरी ही। आपने कहा तकवा इधर है, यानी इधर। आपसे कोई पूछे ना तकवा रहता किधर है, तो आप कहा करें सीने में होता है, दिल में होता है। फिर आपने अपने सीने की तरफ इशारा किया और 3 दफ़ा ये बात फरमाई कि तकवा यहाँ होता है। तो आप कोई भी अमल ज़ाहरी कैसे भी कर लें, जब तक अंदर तकवा ना हो, अल्लाह से मोहब्बत का एहसास ना हो, अपने मुहासबे की फिक्र ना हो, तब तक आप उस इबादत को इंजॉय नहीं कर सकते। तो कह दीजिए कि तकवा की ये कैफियत ही बंदे के आमाल को खूबसूरत करती है। तो सबसे पहली चीज़ जिससे मैं और आप अपना तकवा बढ़ाएंगे, वो दुआएं मांगना। तौफीक की दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह मुझे तकवा दे दे। इसमें 4 दुआएं इधर हमारे सामने लिखी हुई हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, और 4ों दुआओं में आप देखिए तकवा कॉमन है। पहली दुआ हज़रत अब्दुल्ला से है, अल्लाह के नबी की क्या दुआ थी, ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत और इस्तकामत, तकवा और परहेजगारी, इफाफ़ और पाकिजगी और बेनियाजी और इस्तगना का तलबगार हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफा वलगिना। 4 लफ्ज़ हैं, मैं कहती हूँ 4 डायमंड्स हैं। अगर हम ले लें इन दुआओं के आईने में, ज़रा हम ख़ुद को भी परखें, क्या हम भी इस तरह की चीज़ों की दुआएँ मांगते हैं? कहीं हमारी दुआ में सोना चांदी घर रोटी कपड़ा मकान तो नहीं है? देखिए ये मांगने की चीज़ें हैं। और आप अल्लाह के नबी की 700 दुआएं जमा कर लें। घर कम मांगा कभी, मुझे नहीं एक दफ़ा भी कोई एक मिली, आपको मिली हो तो मुझे ज़रूर दिखाइए कि अल्लाह मुझे घर दे दे। अल्लाह मेरे बैंक में कुछ हजार तो हों, कोई मुश्किल पड़ गई तो क्या होगा। मैं सोचती हूँ अक्सर अपने साथ रखकर, हमारी तो दुआएं नहीं नबी से मिलती, हमारे काम कहाँ मिलेंगे, हमारे तौर तरीके कहाँ मिलेंगे, हमारे फिर गम हम, और फिर हम तभी तो बिल्कुल डिफरेंट है। और याद रखिए, एक जुमला लिख लें अपने पास, दुआओं के आईने में शख्सियत को पहचाने। आप भी खुद को नहीं परख सकती जब तक आप अपनी दुआओं को ना चेक करें। और दुआएं कौन सी, जो बड़ा माहौल बना के सबके लाखों के साथ इज्तमाइयत में हो और रोए और रुलाए, नहीं, वो दुआएं जो बेसाख्ता, अला जुनूबिहिम, करवटों में इधर पलटते, अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बी लकल हम्दु, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी कसीरन, जो रातों को आप करवट बदलते हैं ना, उसमें हो। बल्कि आपके साथ जो भी सो रहे हो, आप अपने घर में किसी ना किसी के साथ ही सोते होंगे कमरे में, आप उनसे कहिए, कभी मैं सोऊं और आप जाग रहे हो तो प्लीज़ ज़रा नोट कीजिएगा कि जब मैं करवट लेती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा अपना। ईमान वाले की तो रातें भी गाफिल नहीं होती, दिन की क्या बातें आप करते हैं, गफलत का तार तो आता ही नहीं है। फिर आप देखिए कि दूसरी दुआ हज़रत ज़ैद बिन अरकम से है, और क्या फरमाया आपने, ए अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा और परहेजगारी की दौलत से मालामाल कर दे, और इसको पाक और साफ बनाकर पारसाई अता फरमा, क्योंकि तू ही बखूबी तज़किए नफ्स की अंजाम दही की अहलियत रखता है, और तू ही इसका मालिक और आका है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह तू मेरे नफ्स को तकवा दे, ये हिस्सा है आपके लिए। एक एक दुआ को अगर जमा करें ना, तो सिर्फ इन चार दुआओं में 10 से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने वाकई दिल से ये दुआएं मांग ली तो लग गई आपको, तो आपका नसीब संवर गया। जब दिल से दुआएं करते हैं ना तो कबूल होती हैं, वरना कहते हैं जब दिल ही ना चाहता हो तो दुआओं में असर कहाँ। हम किताबें खोल कर, कुरानी मसनून दुआएं पकड़ कर, हम हिस्नुल मुस्लिम पकड़ कर, हम फैनी गरीब पकड़ कर दुआएं तो मांग लेते हैं, लेकिन दिल कहीं दिमाग कहीं, बाद दफ़ा तर्जमा भी नहीं समझ आ रहा होता, सिर्फ जोश में पढ़ते हैं। तो इनके मानों पे गौर करें, अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे, फिर मारें इसको उस वक्त, शर्म नहीं आती, फिर मुझे शर्मिंदा करता है, फिर सोता रहता है, फिर चीज़ों में पड़ा रहता है, इसको पाक कर दे। इस तरह से आप खुद को डांट डांट के दुआएं मांगें, देखिए नफ्स कैसे नहीं सीधा होता। फिर सफ़र की दुआ देखिए कितनी खूबसूरत है, इस पर आगे डिटेल से बात आएगी, लेकिन यहाँ इसमें चूँकि तकवा का जिक्र है तो उसको देखते हैं। ए अल्लाह हम अपने सफ़र में तुझसे तकवा और नेकी के ख्वास्तगार हैं, और आमाल में से इस अमल के तलबगार जो तेरी रजा का बायस हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा व तकवा व मिनल अमली मा तरदा। कितनी खूबसूरत दुआ है, सफ़र में क्यों, आगे इसके ऊपर बात आएगी, वहाँ करेंगे। चौथी दुआ देखिएगा, हज़रत इब्ने उमर से है, ए अल्लाह मुझे मुत्तकियों के याइमा में शामिल कर ले, व जालना लिल मुत्तकीना इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना। ये इबादुर रहमान की भी दुआ है, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में। तो क्या पता चला, आपके मेरे लिए पहला बुलेट पॉइंट, और मैं चाहूँगी कि इसके कार्ड्स बनाइए। सिस्टर जैनब जब इधर थी तो हम जो क्लास में पढ़ते थे तो वो अगले ही दिन उसके बुक मार्क्स बना के ले आती थी, इधर रखे जाते थे, स्टूडेंट्स लेते थे, कुछ ना कुछ दावा फंड में डालते थे, इतना अच्छा लगता था। और अगर इस पूरी बुक को आप सिर्फ अपने छोटे छोटे इस तरह के बुक मार्क्स में या किसी और भी इस तरह के हैंगिंग चीज़ों में डाल लें, इतनी मोटी 800 सफ़ों की किताब कौन पढ़ेगा, याद कहाँ रहनी है हमें। जब हम पे मुश्किल पढ़नी है, हमें ये किताब का सफ़ा भी नहीं याद होना, ये सिर्फ याद होगी जब आपके सीने में होगी या फिर कहीं रिमाइंडर लिखे होंगे। तो अल्लाह से हम सब इस वक्त भी इस शऊर से दुआ करते हैं कि अल्लाह आज तो तकवा दे ही दे। 3 सेकंड तक अपने लिए दुआ मांगे, तकवा की सिर्फ, और कोई नहीं। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, मुहासिबा, मुराकिबा और मुहासिबा, यानी दिल आपका अपना हिसाब लेता रहे। ये जो लफ्ज है ना मुराकबा, रकिबा से रिकाब कहते हैं गर्दन को, यानी इंसान हिलने ना दे खुद को। जैसे नह नाकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, कुरान पाक में आता है सूरह काफ में, तो इंसान अपनी गर्दन पे नजर रखे। और मुहासिबा हसीबा यहसबु से हिसाबुन, यानी अपना हिसाब खुद ले ले। हजरत उमर का वो कॉल जहन में रख लीजिए, हासिबु कबलान तो हासबु, अपना हिसाब खुद ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो लिहाजा अपना मुहासबा करना ये भी बहुत है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कितने पानी में हूँ। आप इस पॉइंट का कोड वर्ड डाल लीजिए, मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, क्या है मेरे पास। बैंक स्टेटमेंट तो आप चेक करते रहें, नेट पे जा जा के चेक करें अब कितने पैसे, SMS चेक करें, दौलत को देखें, चीज़ों को देखें, शॉपिंग लिस्ट को देखें, तो क्या हम अपने दिल को ना देखें कि अंदर क्या भरा हुआ है? और शायर कहता है कि उस शख्स में कोई खैर ही नहीं है जो अपने नफ्स का मुराकबा ना करे और अपनी ख्वाहिशात नफ्स और शहवानियत के गलबे के वक्त अल्लाह के मुहासबे का तसव्वुर ना करे। दो बातें, आम हालात में अपना मुहासबा, और जब नफ्स किसी गुनाह पे माइल करे तो उस वक्त अल्लाह का ख्याल, और हालत ईमान में अल्लाह के खौफ व खशियत का ख्याल ना रखे। तीन चीज़ें, आम हालात में अपने नफ्स पे गौर करना, जब कोई गुनाह का दिल चाह रहा हो तो अल्लाह की खशियत दिल में लाना, और ईमान आ जाए तो हर वक्त अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास हो। और याद रखिए, जो लोग तकवा से महरूम है असल में वो क्या है? वो नफ्स के गुलाम है। ख्वाहिश नफ्स की गुलामी है तकवा से दूरी। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, सूरत फुरकान में भी और एक और जगह भी अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तूने कभी देखा उसको जो अपने नफ्स को खुदा बना लेता है? तो क्या पता चला कि इंसान हमेशा अपना मुहासबा करता रहे। और जब हम अपने टेस्ट करवाते रहते हैं तो फिर बीमारियों से बचने के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। आप कह लीजिए कि ये टेस्ट करवाने वाली चीज़ है कि अपने तकवा का टेस्ट कराते रहो। थर्मामीटर होता है तो आप अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, इसी तरह कुछ और मीटर्स होते हैं, तो तकवा मीटर के साथ अपना तकवा नापते रहें ताकि आपको कोई अपने बारे में खुशफहमी ना हो जाए। और यकीन करें, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बहुत खुशफहमी है। अल्लाह ताला हमें इससे निकाल कर हकीकत पसंद बना दे। और एक बात याद रखिए कि जब दुनिया में मुहासबे की आदत होगी ना, तो अल्लाह के सामने कल खड़ा होना बहुत आसान होगा। यही है कूमु लिल्लाहि कानितीन, फिर नहीं मुश्किल होगी क्योंकि पहली रिहर्सल इतनी दफ़ा कर चुके। तीसरी चीज़, नीयत की इस्लाह। औन बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि तकवा की पहली ईंट हुस्ने नीयत है। तकवा की पहली ईंट हुस्ने नीयत है, यानी नीयत की इस्लाह ऐसे ही है जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग कंट्रोल करना। अगर आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग सीधा हो गया तो बाकी सब कुछ खुद भी सीधा हो जाएगा। फिर चौथी चीज़, ईमान बिल्ला और इसकी कज़ा व कदर दोनों पहलुओं पर राजी पर रजा रहना। हमारा अगला टॉपिक इसी पे, और मैं कहती हूँ कि एक ख़जाना है जो हमारे सामने आने वाला है। तो लिहाजा चौथी चीज़ बस इतनी लिख लीजिए कि आप अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके फैसलों पर राजी हो जाते हैं। अता बिन अबी रबाह कहते हैं कि मैंने वलीद बिन उबादा से पूछा, क्या कि जान कनी के आलम में अब्बा जान ने क्या वसीयत की थी, यानी मरते मरते आपके बाप ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे बाप की वफात का वक्त आया करीब, तो आपने मुझे कहा, ए मेरे बेटे, मैं तुमको अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ, और तुम उस वक्त तक मुत्तकी हो नहीं सकते जब तक तुम अल्लाह की ज़ात पर ईमान न रखते हो। और कान खोल कर सुन लो और ये बात पल्ले बांध लो कि तुम इस वक्त तक हरगिज़ हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते और ईमान की हकीकी चाशनी की लज्जत महसूस नहीं कर सकते और इल्म के बुलंद मर्तबे पर फायज़ नहीं हो सकते जब तक कि तुम अल्लाह की कज़ा व कदर के दोनों पहलुओं पर ईमान नहीं ले आते। ये दो पहलू कौन से, ये हम उसमें देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने से तकवा कैसे आता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो या रो लें या खुश हो जाएं। सब्र की इंतहाई कैफियत जो है ना, वो तस्लीम और रज़ा। कहते हैं ना, रो धो के सब्र तो आ ही जाता है, रोए धोए बग़ैर सब्र करना तस्लीम और रज़ा। तो जब आप इस दर्जे पे अल्लाह से खुश होने लगते हैं तो अल्लाह की ज़ात फिर आपको तकवा दे ही देता है। ये ऐसे ही कि आप अल्लाह को महसूस करने लगते हैं, अल्लाह ताला की मौजूदगी आपके पास आती है। हज़रत औन बिन अब्दुल्ला कहते हैं, तकवा की बुनियाद सब्र और कनात है। इसको हाईलाइट करें, सब्र और कनात, ये आपका जेम है इस हिस्से का कि मुझे अपने अंदर सब्र और कनात लानी है। फिर चौथी चीज़ क्या है, अपने नफ्स का मुहासबा करना। मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि बंदा उस वक़्त तक मुत्तकी बन ही नहीं सकता जब तक अपने नफ्स का मुहासबा ना कर ले। ठीक इस तरह, बल्कि इससे भी अशद, जो कि वो अपने हिस्सेदार का किया करता है, यानी जैसे दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखते हैं ना, फलां कौन है, उसकी नीयत क्या है, उसके मोटिव्स क्या हैं, वो चाहता क्या है। अक्सर हम दूसरों के मुहासबे ले रहे होते हैं, का जिस तरह दूसरों का मुहासबा कर रहा होता है, जब तक एक इंसान अपना इस तरह मुहासबा ना करे तकवा नहीं आता। ताकि इसको पता चल जाए कि इसका खाना पीना किस नौयत का है और पहन ओढ़ना किस मसरफ का है और पीने की क्या कैफियत है, यानी जो खा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, हराम से ले रहा है कि हलाल से। ज़रा यहाँ चंद सेकंड गौर कीजिए। मुहासबा करते हैं, जो सुबह खाना खाया था किस कमाई का था, जो तन पे कपड़े पहने हलाल के हराम के, जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी में कहीं हराम का पानी तो नहीं लगा, उसके लेने में खरीदने में उसके इस्तेमाल करने में कहीं नाफरमानियां तो नहीं है? कहाँ से आए तकवा हमारे दिलों में? हमने तो इतने मोटे मोटे ताले लगाए हैं चारों तरफ, हम कहते हैं ये ना करो तो ये ना कर सकते ही नहीं, हो ही नहीं सकता, गुजारा नहीं होता, और कितने रिलैक्स्ड होके हमने उस सिस्टम को कबूल किया हुआ है। ना चूँ करते हैं ना चराँ करते हैं, कहते नहीं इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलती, कर्जे के बगैर गाड़ी ली नहीं जाती, किस्तों पे ना लें तो करें क्या। मैं कहती हूँ ये तो अल्लाह का बड़ा हम पे रहम है, हम 4-5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहे हैं, जो आज मुसलमानों के काम और करतूत है, मैं कहती हूँ वो इतने बिगड़े हुए होते अगर अल्लाह के नबी की दुआ न लगी होती। जो हमारे लाइफस्टाइल हैं, जो तरीके हमने इख्तियार किए हुए जिंदगी बसर करने के, ये कहाँ तकवा को आने देते हैं, ये सिर्फ मसलतों को आने देते हैं, और ये उजर और बहाने और बींग अपोलोजेटिक, बस क्या करें, मजबूरी है हल, इसका रोना है आज हमारी नस्लें। यानी ये एक से एक जुड़ी हुई चीज़ है, हम एक तरफ नहीं सीधे होंगे, दूसरा कभी सीधा हो ही नहीं सकता। जैसे पजल्स होते हैं ना, एक पजल का टुकड़ा गलत जगह लगा दे सारी तस्वीर खराब है। आज जो दीन की तस्वीर खराब है ना, उसमें वजह यह कि हमारे टुकड़े बकड़े हैं। अच्छा एक है, चलो रो रहे हैं, इल्लमा नुक्रिहा वकल बहुमत मैन बिल ईमान, हजरत अम्मार वाली कैफियत हो तो मान लेते हैं कि कलमा कुफर भी कह के आ गए, लेकिन आके वापस कहीं घर नहीं गए, नबी के पास आके रोए धोए, अल्लाह के नबी ये आज इन काफिरों ने मुझसे क्या करा लिया। मैं कहती हूँ सिर्फ अगर ये कैफियत भी मुसलमान पैदा कर लेना अपने दिल में, वेस्टर्न स्टाइल में रहने की मजबूरियों के नाम पर, कि इंश्योरेंस के बगैर घर नहीं लिए जाते, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलती, या कर्ज के बगैर, मैं कहती हूँ सिर्फ ये कैफियत भी दिल में आ जाए ना, तो अल्लाह की कसम खाती हूँ कि अल्लाह आज तक मुसलमानों के हालात बदल देता। लेकिन मसला क्या है, कैसा से जिया जाता रहा। ये नहीं है कि हम अपना नुकसान करें, मसला ये कि हमारे दिल में नुकसान का एहसास ही नहीं, हम खुश हैं, हंसते हुए बताते हैं क्या करें, मजबूरी है, इस मुल्क का कानून है, तो आप कितने खुश हैं, क्या ये भी मजबूरी है कि आप खुशी से ये काम करें? आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्यों आप गूंगे शैतान हो गए? आपको क्या क्या ना इख्तियारात दे दिए इन मुल्क वालों ने, क्या आप 20-25-50 साल में कोई अपना नॉन इंटरेस्ट बैंक नहीं बना सके? क्या आप ये साबित नहीं करा सके कि फतवक्कल अल्लाह, हमें नहीं अपनी गाड़ियों की ये चाहिए, हम किसी की करी अपने ऊपर नाम क्यों लें? बहरहाल ये तो एक दुखती रोग है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ ये कड़वे जुमले बोलना। अगर ये बोले बगैर आपको ये टॉपिक पढ़ा गई तो टस से मस मैं भी नहीं होंगी, आप भी नहीं होंगे, तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की। आप गुनाह को कबूल भी करें तो दिल रोए, उबकाइयाँ आएँ, ऐसे लगे कोई छिपकलियाँ खिला रहा है। हम कैसे कहते हैं हाँ क्या करें, नहीं हराम नहीं है, आज के दौर में ठीक है, हम इस शोबे में नहीं होते, हम उस शोबे में हैं, और हम नहीं, असल में हम घर में खाना तो दूसरे ही पैसों का लाते हैं। ये दिल की मौत की अलामत है, ये तकवा के में तकवा से महरूम होने की अलामत है कि हराम पे आप इतने मुतमईन, इतने मस रिश्तेदार हैं, क्या करें, उनके घर दावत में तो जाना ही पड़ेगा, अब मजबूरी है, फिर देखो ना सिला रहमी तो है। ये झूठ बोलते हैं हम, अगर ये सच जैसे मेरी जबान से इस वक्त निकल रहा है, ये सारे सच बोल रहे होते ना हम सब दीन वाले, तो यकीन करें कब की दुनिया से ये मुसीबतें छुट चुकी होती। वो तुम्हारा मुंह देख रहे हैं कि जब ये खा रहे हैं तो खिलाओ फिर इनको, ये गंद के आदि कर रहे हैं करो इनको। और याद रखिए जब तक हमारी जिंदगी से ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, अल्लाह चाहता कि ये भी नहीं समझ आएगा। तो मुहासबा नफ्स बहुत ज़रूरी है।